ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे, भगवान से पढ़ाई पढ़ने वाले, कोटों में कोई और कोई में भी कोई, विशेष आत्माएं जिनके ऊपर स्वयं भगवान की नजर पड़ी, तो वो सभी भाग्यशाली बच्चे हम बाबा के बच्चे हैं। तो रोज हमें स्वयं भगवान पढ़ाई में सारे दिन भर की दिनचर्या दे देते हैं, किस प्रकार से पढ़ाई से मुरली के द्वारा जो डायरेक्शन मिलते हैं उसमें मनुष्य से देवता बनने की सारी धारणाएं, सब बातें बाबा हमें बताते हैं। तो मुरली के ऊपर हमारा कितना अटेंशन चाहिए, हर दिन की मुरली विशेष होती है, हर दिन की मुरली आत्मा के लिए भोजन है, खुराक है। जैसे बाबा कहते शरीर को दो तीन टाइम भोजन देते हैं और भोजन को हजम करने के बाद में क्या होता है, खून बनता है और खून से शक्ति मिलती है। तो उसी प्रकार से मुरली हम सब आत्माओं के लिए भोजन है, आत्मा का भोजन। जैसे बाबा कहते गाय जुगाली करती है खाना खाने के बाद, है ना, भोजन करने के बाद उगारती रहती है। तो मुरली की बातें भी दिन भर में चलते फिरते उठते बैठते कर्म योग करते भी मुरली का चिंतन अंदर में चलता रहे। स्कूल में पढ़ने वाले जो अच्छे बच्चे होते हैं उनका पढ़ाई के ऊपर लौकिक में भी कितना अटेंशन होता है, समय पर स्कूल में पहुंचना और टीचर के द्वारा बताई हुई बातों को ध्यान से सुनना, साथ साथ में जो होमवर्क मिलता है वो भी अच्छी रीति से करके लाना, है ना, ये सभी बातें लौकिक स्कूलों में भी होती है। तो वहां पर भी जो पढ़ाई का अच्छा चार्ट रखते हैं और साथ साथ में अपने चरित्र का भी, उसका भी सर्टिफिकेट मिलता है। तो पढ़ाई में कितनी नियमितता चाहिए, रेगुलर। कभी मुरली सुनी, कभी मुरली नहीं सुनी, कभी चलते फिरते सुन लिया, लेकिन एक होता है रेगुलर स्थान पर जाकर मुरली सुनना। समय परिस्थिति कुछ ऐसी है तो फिर बाबा जैसे कि कहते घर भी आपकी पाठशाला है तो वहां पढ़ते हैं, वो अलग बात। लेकिन जहां तक है मुरली को ध्यान से समय पर आकर के सुनना, और ये ज्ञान के रत्न जो एक एक लाखों रुपए के हैं बाबा कहते, वो बुद्धि में कब टिकेंगे, जब बुद्धि हमारी सतो प्रधान होगी, स्वच्छ बुद्धि होगी। और स्वच्छ बुद्धि के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले जब हम यहां आते हैं तो क्या करते हैं? साइलेंस में बैठते हैं, योग का प्रयोग करते हैं। योग में बैठने से बुद्धि स्वच्छ होती है और जो अनेक प्रकार के संकल्प हैं, तूफान के रूप में जो आते हैं, या साधारण या व्यर्थ संकल्प है, योग के द्वारा शांत हो जाते हैं। और फिर जो हम ज्ञान सुनते हैं तो वो ज्ञान की बातें बुद्धि में सहज बैठती है। तो रोज मुरली ध्यान पूर्वक सुनना कि मुरली सुनाने वाला कौन है। जिस मुरली का गायन कलयुग के अंत तक भी चलता है, किसकी मुरली है ये? भगवान की मुरली। लेकिन उसकी तुलना में कलयुग में क्या गायन हो गया? काठ की मुरली का गायन, कि कृष्ण ने मुरली बजाई और सभी गोपियां अपना धंधा कर्म जो भी करते हुए सब छोड़ करके आ गई मुरली सुनने के लिए। लेकिन बात है इस संगम युग की, जब स्वयं भगवान मुरली सुनाते हैं तो हम सब अपना काम समय पर व्यवस्थित रूप से पूर्ण करके और जल्दी जल्दी मुरली सुनने के लिए दौड़ लगाकर पहुंच जाते हैं। तो वो ये ज्ञान की मुरली है। और हमारा बाप स्वयं पढ़ाने वाला बाप, टीचर और सतगुरु के रूप में हमें सब डायरेक्शन देते हैं। तो आज की मुरली साकार मुरली में बाबा ब्रह्मा बाबा के भी अपने अनुभव भी होते हैं और शिव बाबा भी सुनाते, दोनों बातें होती है। अव्यक्त मुरली विशेष होती है, जिस मुरली को कम से कम दिन भर में 5-7 बार जब हम पढ़ते हैं तो मुरली की बातें अच्छी तरह से हमारे दिमाग में बैठती है। अब यहां बैठते हुए भी जैसे दीदी ने बताया, मुरली सुनते सुनते ये बाबा की मीठी लोरी का काम करती है, तो सुनते सुनते भी निद्रा लोक में पहुंच जाते हैं। तो कितना अटेंशन चाहिए, क्योंकि हम युद्ध के मैदान में भी हैं, इसलिए माया से हमारी युद्ध भी है। तो युद्ध में कैसे रहना होता है? चौकन्ने होकर, है ना, तब युद्ध के मैदान में विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबा आज प्यार का सागर बनकर आए और किस रूप में बच्चों को देखा? बच्चे भी कैसे, कहां से आए, कौन से बच्चे, और कितना प्यार बाबा के साथ में बच्चों का, और बच्चों का प्यार बाप के साथ में। तो बाबा कितनी दूर से हमें पढ़ाने आते हैं, प्यार के सागर। क्या बताया बाबा ने प्यार के लिए? एक सेकंड का परमात्म प्यार अनेक दुखों को भुलाने वाला। तो कैसा प्यार है, और प्यार की डोर हमारी किससे जुड़ी है? बाबा के साथ। स्थूल में भी लौकिक में भी अगर किसी का किसी से प्यार होता है तो उनके सामने वही व्यक्ति दिखाई देता जिससे प्यार होता। तो हमें पढ़ाने वाला स्वयं प्यार का सागर बाबा, जिससे हमारी बुद्धि की डोर जुड़ी है। और बाबा ने किस प्रकार के बच्चों को चुना? साधारण बच्चों को चुना। क्योंकि साधारण बच्चों में बाबा ने एक विशेषता बहुत बड़ी देखी, भावना होती है। भक्ति में भी जिस प्रकार से कहा जाता है, भक्ति में कहते थे कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। तो बाबा भी यहां पर भावना वाले बच्चों को देखते, और संगम युग पर साधारण रहना भी, ये भी बाबा ने एक हमारा श्रेष्ठ भाग्य की निशानी बना दी कि मुझे साधारण बच्चे ही चाहिए। बहुत पढ़े लिखे हो, धर्मात्मा हो, महात्मा हो, पैसे वाले हो, है ना, तो उनको भी बाबा ने नहीं चुना, है ना। साधारण बच्चों को बाबा ने चुना है, क्योंकि यहां जो साधारण है उनको ही बाबा को सतयुग में क्या बनाना है, धनवान बनाना है, है ना। यहां श्रेष्ठ आत्माएं बनेंगी, साधारण आत्माएं, और वहां की धनवान आत्माएं बनेंगी। तो यहां के करोड़पति अरबपति बाबा को नहीं चाहिए, लेकिन भावना वाले साधारण बच्चे चाहिए। तो बाबा ने क्या किया, हम बच्चों को क्या दिया, भाग्य लिखने की कलम। स्वयं भाग्य विधाता भगवान ने हम बच्चों को अपने हाथ में दी। अब बाबा ने कहा कि जितनी लंबी लकीर भाग्य की खींचने चाहो खींच सकते हो। यह समय है संगम युग का, भाग्य बनाने का। तो छोटी लकीर चाहते हो या बड़ी लकीर चाहते हो, बड़ी लंबी लकीर। तो बाबा ने भाग्य हमारा बनाया भी और साथ में कलम भी दे दी कि अब आगे भाग्य को और बढ़ाते रहो, है ना। तो भाग्य बनाने के लिए क्या करना होगा, किस किस प्रकार से भाग्य बनाया जा सकता है, सभी प्रकार से। जो भी अपनी कलाएं हैं, विशेषताएं हैं, गुण हैं, तन मन धन संकल्प शक्ति समय श्वास, सभी बाबा की याद में, बाबा की सेवा में समर्पित करना, है ना। कोई का शरीर स्वस्थ है तो तन से भी भाग्य बनाते हैं, तो मन से बाबा ने कहा कि मनसा सेवा करके भी अपना भाग्य बना सकते हैं। धन से स्थूल कार्य में, किसी भी कार्य में सर्विस में मददगार बनना, बाबा के यज्ञ में स्वाहा करना, तो उससे भी अपना भाग्य बनाया जा सकता है। अगर किसी भी प्रकार की कोई विशेष कला है तो उससे भी हम अपना भाग्य बना सकते हैं। तो भाग्य विधाता ने हमें कलम दी भाग्य बनाने की। फिर बाबा ने आगे और क्या कहा, आप भी बोलते रहें साथ साथ में, जिनको जो मुरली की पॉइंट याद है। हाँ, बाबा ने एक बात बताई कि सर्वशक्तिमान साथ में है तो फिर माया क्या है, पेपर टाइगर, है ना। पेपर का कोई खिलौना होता है तो उससे डरना थोड़े ही चाहिए, और जिसके साथ में स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है तो उनको तो किसी प्रकार का माया का भय नहीं, डर नहीं। माया क्या है, बाबा ने कहा, आपके कमजोरी के संकल्प माया है। माया कोई और चीज नहीं है, लेकिन हमारे ही व्यर्थ संकल्प, जब ज्ञान की पटरी से बुद्धि में व्यर्थ का किचड़ा कुछ जमा होता है, उसकी याद आती है या व्यर्थ संकल्प आते हैं, यही माया का रूप बनकर सामने आता है। बाकी माया कुछ और तो नहीं, दिखने वाली चीज तो नहीं है माया कोई, है ना। तो हमारे कमजोर संकल्प वही माया है। तो माया जीत बनना है, माया जीत जगत जीत। फिर बाबा ने क्या कहा आज, कर्म इंद्रियों पर जीत प्राप्त करना। अब कर्म इंद्रियों में विशेष बाबा ने सूक्ष्म शक्तियों, मन बुद्धि और संस्कार, इन तीनों पर जीत प्राप्त करना। मन को जैसे चाहे जहां चाहे वहां लगाए, हमारे वश में हो। अगर मैं राजा हूं तो सभी कर्म इंद्रियां, आंख नाक मुख कान, सभी हाथ पैर मेरे इशारे पर ही चले। ऐसे नहीं कि यहां बैठे हैं और मन कहीं बाहर भागता है तो उसको राजा तो नहीं कहेंगे, कर्म इंद्रिय जीत तो नहीं कहेंगे, तो आंखें कहीं चलते चलते धोखा देती है तो कर्म इंद्रिय जीत नहीं है ना। मुख से नहीं बोलना चाहिए, वो कुछ निकल गया, भूल से भी निकल गया तो कर्म इंद्रिय जीत तो नहीं कहेंगे, तो उसको राजा तो नहीं कहेंगे। तो राजा माना हर कर्म इंद्रिय ऑर्डर के प्रमाण कार्य करे। कोई भी संकल्प अंदर में अगर ज्ञान का मनन चिंतन या ज्ञान की बातें जो बाबा ने सुनाई है वही जब चलती रहती है, उसी का मनन चिंतन चलता है, तो किसी भी प्रकार के व्यर्थ की अंदर आने की मार्जिन नहीं। लेकिन इसके लिए बाबा ने क्या कहा, अटेंशन, अभ्यास है ना। दो बातें बाबा ने बताई, तो कोई ना कोई स्वमान का अभ्यास भी, बाबा की मुरली में बहुत सारे स्वमान आते हैं। कितनी बड़ी बात बाबा ने बताई कि स्वयं भाग्य विधाता ही आपका हो गया तो फिर और क्या चाहिए, भाग्य बनाने वाला ही स्वयं भाग्य विधाता हमारा बाप है। कितना ऊंचा भाग्य है, कितना ऊंचा स्वमान है। तो अनेक प्रकार के स्वमान की बातें मुरली में, अव्यक्त मुरली में बहुत सारे स्वमान होते हैं, तो वो स्वमान की पॉइंट्स को बार बार में दोहराते हैं। बाबा ने कहा कि रिवाइज करना, तो रिवाइज करने से क्या होता है, रियलाइज होता है, बार बार में रिवीजन करना। कभी किसी के साथ में भी हम चलते फिरते उठते बैठते मुरली की बात का रिवीजन कर सकते हैं, तो अकेले में भी मुरली रिवीजन की जा सकती है। अच्छी अच्छी पॉइंट्स जो मुरली की नोट करते हैं तो बुद्धि रूपी डायरी में भी कुछ ना कुछ नोट जरूर होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि मुरली की पॉइंट्स ज्यादा स्थूलता में रहने से है ना, कर्म योग करते करते कर्म में ही इतने लिप्त हो जाते हैं कि मुरली की बात बुद्धि में कुछ भी नहीं रहती। कई बार अचानक में कोई पूछ लेते हैं कि आज मुरली में बाबा ने क्या बताया, तो देखने लग जाते क्या था, एक दो पॉइंट भी मुश्किल निकलती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अपने आप से बातें करनी है। हमारी स्टोरी ही बाबा हमें सुनाते हैं 84 जन्मों की, कि तुम क्या थे कैसे बन गए और अब वापस कैसे बन रहे हो। आज कल परसों जैसे बाबा ने बताया एक दो दिन पहले, तो इस प्रकार की हमारी ही कहानी 84 जन्मों की बाबा हमें सुनाते हैं। तो मुरली को अगर हम कहानी के रूप में वो पॉइंट्स ले लेते हैं कुछ और उनका अभ्यास करते हैं, तो मुरली कभी भुलाई नहीं जा सकती, कुछ ना कुछ बुद्धि में चलता ही रहेगा। फिर बाबा ने आत्मा का अभ्यास बार बार में ये भी करने को कहा कि अपने आप को आत्मा देखना। तो आत्मा भी कौन सी आत्मा हूं, इसके पीछे हम स्वमान जोड़ देते हैं, तो एक हाँ ज्ञान स्वरूप आत्मा। बाबा ने कहा कि सारे प्रकार के जो भी हमारे आत्मा की गुण है, शक्तियां हैं, ये समय पर याद रहे कि मैं कौन सी आत्मा हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, सुख स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, अपने स्वरूप को बार बार में सामने लाना और अपने स्वरूप में स्थित होना कि एक होता है ज्ञान का केवल वर्णन करना और दूसरा होता है कि उसका स्वरूप बन जाना। बाबा ने कहा ना कि सोचना और करना दोनों बातें हो साथ साथ में, सोचा और किया भी, तो कर्म योग करते करते केवल कर्म में ही, कर्म को ही योग नहीं समझना है, क्योंकि बाहर वाले लोग भी कर्म करते हैं, लेकिन हमारा विशेष योग करते हुए, कर्म करते हुए कर्म में योग समाया हुआ। कोई भी कार्य करते हैं, चाहे स्थूल में कार्य करते हैं या किसी को ज्ञान सुनाने का कार्य करते हैं, वाचा के द्वारा कार्य करते हैं, वो भी एक कर्म है। तो देखते सुनते बोलते हर समय कर्म योग योग सम्मिलित हो, तब रूहानियत रहेगी और हम आपस में अपने असली स्वरूप में रहकर दूसरों को देख पाएंगे, है ना। तो योग कर्म में शामिल हो, योग अलग से नहीं, क्योंकि सारी शिक्षा तो बाबा हमें कर्म योग की देते हैं कि दिन भर में बैठेंगे तो कितना बैठेंगे। बाबा ने कल भी जैसे बताया कि 8 घंटा कम से कम मुझे याद करो, 16 घंटा आप फ्री हो, तो बैठ करके तो नहीं याद कर सकेंगे ना कि 8 घंटा हम बाबा के कमरे में ही बैठ जाएं, और बैठ भी गए और हमारा मन इधर उधर जाता है। जैसे बाबा ने कहा मन जीत और कर्म इंद्रिय जीत, दो बातें बाबा ने बताई, तो मन इधर उधर न जाए, मन की लगाम हमारे हाथ में हो, मालिक के हाथ में, तब वो कर्म योग योग में परिवर्तन हो जाएगा कि कर्म करते हुए, तभी तो निरंतर योगी बन सकेंगे। दिन भर में नहीं तो योग कैसे करेंगे, बैठ बैठ कर। खाना बनाने वाले हैं, खाना बना रहे हैं, लेकिन किसकी याद में, शिव बाबा की याद में बना रहे हैं, तो कर्म योग है। और बाबा ने क्या बात बताई, जो नई बात, दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता है, इसलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय है तो विजय हमारी अवश्य ही है, विजय टल नहीं सकती। कई बार ये बाबा के महावाक्य बाबा बताते हैं, तो निश्चय बहुत जरूरी है। किसी भी कार्य में अगर हम ढीले संकल्प से शुरू करते हैं किसी भी कार्य को, तो निश्चय पक्का न होने के कारण सफलता भी उतनी नहीं मिलती जितनी हम चाहते हैं। तो निश्चय होगा तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। और हाँ, बाबा ने छोटी मोटी नदियां या वो नहीं बनाया, जैसे बाबा ज्ञान के सागर हैं, तो हमको बाबा ने क्या बनाया है, भरपूर भंडार, है ना, थोड़ा बहुत नहीं, थोड़े में खुश होने वाले नहीं, लेकिन भरपूर भंडारा, बाबा का भंडार, जैसे भरपूर कहते हैं ना, भंडारा भरपूर, हाँ, कोई भी कुछ भी खुटता नहीं इस भंडारे में। तो ये ज्ञान का भंडारा भी विशेष भरपूर भंडार हो हमारे पास में, हर गुण शक्ति का अनुभवी मूर्त बने। अनुभवी मूर्त कभी भी धोखा नहीं खा सकते, अनुभव की अथॉरिटी सबसे बड़ी अथॉरिटी बाबा ने बताया है ना। जिस चीज का हम अनुभव कर लेते हैं, या ज्ञान की पॉइंट मनन चिंतन करते कोई अच्छी नई पॉइंट सामने आती है, तो क्या होता है, खुशी बढ़ जाती है। तो बाबा ने कहा कि ये भंडारा आपका भरपूर है, और वाणी और मनसा की सेवा वरदान में बाबा ने बताया इकट्ठी दोनों साथ साथ में करें। कई बार बाबा कहते कि मनसा से जिनको भी हम समझाते हैं या ज्ञान की बात सुनाते हैं तो उनको दृष्टि देते हुए आत्मा भाई भाई का अभ्यास करते हुए उनके प्रति शुभ भावना रखते हुए उनको ज्ञान की बातें सुनाए तो उनको तीर सहज लगेगा, है ना। तो मनसा सेवा भी, शुभ भावना की सेवा भी साथ साथ में हो। बैठकर करना अलग चीज है, लेकिन वाचा में भी मनसा सेवा सम्मिलित हो। और एक बोलेंगे तो पता लगे। हाँ, एक रस स्थिति बाबा ने कहा, तो एक रस स्थिति के आसन पर सदा अचल अडोल रहना है ना। तो एक कोई भी चीज में जहां हिलने की मार्जिन होती है वहां क्या होता है, अनेक बातें बुद्धि में रहेगी तो बुद्धि इधर उधर भटकती है, हिलने की मार्जिन होती है। और एक ही जब सब कुछ है, जबकि बाबा को हमने अपना संसार बना लिया कि एक बाबा ही हमारा संसार है, तो बुद्धि कहीं भटक नहीं सकती। सब संबंध हमारे उनके साथ में है, तो हमारी बुद्धि अनेक व्यर्थ के संबंधों में नहीं भटक सकती। तो सदा ही स्थिति अचल अडोल रहेगी जिनका एक के साथ में बुद्धि योग है। और बाबा ने कहा, हाँ बाबा ने कहा कि टू लेट का बोर्ड नहीं लगा, आप लेट के बोर्ड लगने पर ही आ गए। जो 94 में आए उस समय बाबा ने ये बात कही कि चलो अच्छा है टू लेट के बोर्ड के पहले आ गए, क्योंकि अंत में बाबा ने कहा ना कि जैसे भी मकान बनाते जाएंगे और बड़े करेंगे तो भीड़ तो और बढ़ती जाएगी। फिर बाबा ने कहा अगर ज्यादा और सभी को बुला लें तो क्या करना होगा, अखंड योग करना होगा। फिर रात को भी फिर खाना नहीं खाएंगे तो भी चलेगा, आराम नहीं करेंगे तो भी चलेगा, पट राजा पट रानी ये भी बाबा बनाते है ना। शास्त्रों में तो कितना गायन है पट राजा पट रानी का, और यहां तो आप सहज बन गए। तो बाबा ने कहा कि इतना सब होगा फिर भी अगर खुशी है अंदर में तो क्या करेंगे, रात पर जाग करके भी अखंड भट्टी करेंगे, है ना। तो बाबा कितना मुरली के द्वारा हमें बहलाते हैं। अब ये मुरली में से दो चार पॉइंट भी हम एक कागज के टुकड़े पर भी अगर लिख लेते हैं और उसको पॉकेट में हमेशा के लिए अपने साथ में रोज रख लेते हैं, दिन में दो तीन बार देख लेते हैं, दो चार को मुरली का कभी आपस में पॉइंट पूछ लिया, तो आसानी से मुरली की पॉइंट्स हमें याद रह सकती है और उन चीजों का हम अभ्यास कर सकते हैं अच्छी रीति। कर्मयोग का हमने बताया ना, कर्मयोग का आई बात। और कुछ ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।